संबंध जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। निर्मानमोहाजित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। निर्माण मोहा। शरीर में मैं और मेरापन होने से मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जितसंग दोषा। भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता स्प्रिया वासना आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में निवृत्त कामा पद अलग से दिया है। अध्यात्म नित्याः। केवल भगवान के शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है उसकी स्थिति वहाँ ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता निरंतर रहती है, वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे चाहे न करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ मानते हैं वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामाः। संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा होती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं बीमार न हो जाऊं, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए, इसी से सांसारिक धन पदार्थ मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों के अंदर कामनाएं नहीं रहती हैं, मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और अहम ये सभी भगवान के ही है, भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं, इसलिए उन्हें यहाँ विनिवृत्त कामाह पद से कहा गया है। विशेष बात, वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है, साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती है। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि आज ये मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही तो है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। स शांति मापनोति न काम कामी, 2:70। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है, इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता है। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है तब उस पदार्थ के मिलने पर, या यूं कहें कि उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर, अभाव की मान्यता का दुख मिट जाता है और उस दुख के मिटने पर ही सुख की प्रतीति होती है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थों की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ है। द्वंद्वैर्व मुक्ताः सुख दुख संगैः, वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं रहती। अतः जो कुछ होता है वो हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5:29। उनके द्वारा अपने अंश जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति ही आती रहे, क्योंकि इस प्रकार का द्वंद्व उनमें होता ही नहीं। विशेष बात, ये जो द्वंद्व होते हैं राग द्वेष आदि हर्ष शोक आदि, इसी का नाम विषमता है। इन्हीं द्वंद्वों से सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद हैं। पहला स्थूल द्वंद्व व्यावहारिक द्वंद्व कहलाता है। सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व हैं। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्यों में पशु पक्षियों में वृक्ष आदि में सभी में देखने में आता है। दूसरा है सूक्ष्म द्वंद्व, इसको आध्यात्मिक द्वंद्व कहते हैं। यद्यपि अपनी उपासना और अपने उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर देना आवश्यक और लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है, जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधकों को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरों की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्पर लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलिलम 2:52 और सूक्ष्म द्वंद्व को श्रुति भी प्रतिपन्ना 2:53 पदों से कहा गया है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार का संबंध या महत्व रहता है तभी तक ये द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है, अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूढ़ता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूढ़ता है। राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है। अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही ये संबंध प्रतीत होता है। ये सभी का अनुभव है कि सुख दुख आदि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर हम और हो जाते हैं, परंतु मूढ़तावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित रहे तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए हैं, उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि वह इनके वश में न हो। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करें, क्योंकि क्रिया करने से ही वे पुष्ट होते हैं। गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ माने अज्ञानी मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार मोह रहित भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है, इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मोह है। जिनकी ये मूढ़ता चली गई उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ा कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वह मुक्ति का पात्र हो जाता है। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने दो बार मूढ़ता के त्याग की बात निर्माण मोहा और अमूढ़ा कहकर मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। मोह दो प्रकार का होता है। पहला तो परमात्मा की ओर न लगकर संसार में लग जाना और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। इस श्लोक में पहले निर्माण मोहा पद से संसार का मोह चले जाने की बात कही है और यह अमूढ़ा पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्वमूलम पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूप परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा रूप परम पद को यहाँ अव्ययम पद कहा है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उनको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण द्वारा समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई गाड़ी चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहां से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों अपने स्थान पर ही खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता चलता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ। परिशिष्ट भाव। ज्ञान योग और कर्मयोग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों आ जाते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। इसलिए यहाँ अध्यात्म नित्या पद से ज्ञान योग और निवृत्त कामा पद से कर्मयोग ले सकते हैं।